SBS हिंदी।
SBS हिंदी पर आज एक ऐसी लड़की की कहानी या बातें जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया वोलोंगोंग के भारतीय समुदाय की मदद से एवरेस्ट के शिखर को सर कर आई हैं। आपको लग रहा होगा इसमें क्या खास बात है, आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं और एवरेस्ट को सर कर वापस आ रहे हैं। लेकिन इनकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि अपने सपने को साकार करने के लिए सबसे पहला संघर्ष उन्हें अपने घर से ही करना पड़ा था। एक बेटी होने के कारण उन्हें अपने घर में ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ शीतल को आर्थिक संकट भी था जिसमें मदद की ऑस्ट्रेलिया के समुदाय ने। चलिए इस शीतल से मुलाकात करवाती हूँ जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं और इस एवरेस्ट को सर करने के बाद शीतल कहती हैं कि वो उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की लड़की हैं जिन्होंने ये सिद्धि हासिल की है। बात करते हैं शीतल से। शीतल बताती हैं कि जब वो पैदा हुई तो उनकी दादी चाहती थी कि उनके घर लड़का पैदा हो और शायद इसी के कारण उनकी दादी नाराज होकर उन्हें देखने तक नहीं गई।
बिल्कुल, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा दादी को पता चला कि एक बेटी पैदा हुई है, तो मेरा दादी मेरे मम्मा को देखने भी नहीं आई और वो डायरेक्ट घर आ गई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि वो एक लड़के का सोच रही थी कि उनका मतलब कि पहला सच नाती होगा तो वो मतलब लड़का है ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरी वजह से मेरी मम्मा को भी बहुत सारा प्रॉब्लम था।
परिवार से भी सहकार मिलना इतना आसान नहीं था।
सबसे पहले मैं अपने घर से ही सारा कुछ पहले घर वालों को उस चीज के लिए उनको बोलना कि मुझे ये क्लाइंट करना है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और हमारे यहाँ पे गर्ल्स को बाहर पे जाना भी अलाउड नहीं है। इवन यहाँ पे लड़कियां अगर कपड़े भी अगर अच्छे से नहीं पहनते तो उसमें भी बहुत सारा इश्यूज वगैरह करता है कि अकेले ही नहीं जाना है आपको बाहर। तो वो सबके लिए पापा और मम्मा को कन्विंस करना कि नहीं मुझे ये चीज क्लाइम करना है और वो भी अपना पिथौरागढ़ से बाहर जाके माउंटेन्स में जाके जहाँ पे गर्ल्स बॉय सारा का सारा मिक्स रहता है तो वहां पे मुझे क्लाइम करना है, तो वो सब कुछ पापा लोग को बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था।
तो जिस तरह से मुझे मन में प्रश्न हो रहा है वैसे आपको भी होता होगा कि तो फिर ऐसे माहौल में शीतल ने पर्वतारोहण करने की शुरुआत कैसे की और जब पहली बार उनके परिवार को ये पता चला कि वो पहाड़ों पर चढ़ती है, पर्वतारोहण करती है, तो उनका रिएक्शन कैसा था?
मैंने एनसीसी के थ्रू ही माउंटेनिंग शुरू किया। फर्स्ट टाइम मैंने मम्मा अपने पेरेंट्स को फर्स्ट टाइम नहीं बताया था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने उनको सिर्फ ये बोला था कि मैं एनसीसी का कैंप करने के लिए जा रही हूँ तो मैं इतने दिनों के बाद आऊंगी या फिर इतने मंथ के बाद आऊंगी, क्योंकि एनसीसी में ये रहता है कि पूरा सारा कुछ सेफ्टी इन द सेंस आप लोग पूरा आर्मी के अंदर रहते हो। तो उन्हें बोला कि ठीक है इट्स ओके, चल ठीक है, अगर इसके उसमें जा रहे हो तो आप जाओ। लेकिन मैं थी एनसीसी के अंदर ही थी, एनसीसी से ही मैंने माउंटेनिंग शुरू किया था। तो उस टाइम पे जब मेरा न्यूज पर नाम आने लगा कि पिथौरागढ़ की मतलब शीतल ने ये क्लाइम किया है, मतलब ये वाला पीक जैसे देवती का त्रिशूल पीक क्लाइम किया है, तो उसके बाद पेरेंट्स का मतलब बिलीव होने लगा कि ठीक है हाँ ये कुछ अच्छा कर रही है। तो उसी के बाद से फिर उनने मुझे चांस दिया कि ठीक है आप जाओ और अच्छे से क्लाइम करो ऐसा बोल। लेकिन मामा पापा लोग भी अभी तक क्लाइंबिंग के मतलब अब थोड़ा सा जाने लगे कि ठीक है माउंटेनिंग क्या होता है, लेकिन उन लोग को अब मतलब पता नहीं था कि माउंटेनिंग क्या होता है कैसे करते हैं। और जब मैं फर्स्ट टाइम मैं क्लाइंबिंग के लिए गई थी माउंट रुद्रगैरा, जब माउंट मतलब टॉप पे पहुंचा समिट पे पहुंचा तो उस टाइम पे जितना भी थकान था सारा कुछ मतलब कि बिल्कुल खत्म हो गया और इतना प्राउड सा फील हो रहा था ना खुद को देख के, मतलब वो वाला फील मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं, इतना साइलेंस और इतना प्राउड ही फील हो रहा था खुद को देख के। और इवन हमारे साथ लड़के भी थे बट वो लोग काफी पीछे थे, तो मतलब उस टाइम पे ना मुझे दादी का वही याद आ रहा था ना कि लड़की है क्या करेगी फटाफट शादी कर दो इसका। एक्चुअली मेरा शादी का भी बहुत सारा बात हुआ था घर पे कि शादी कर दो, आप 12th पास कर दिया 10th पास कर दिया शादी कर दो, मेरा दादी ने तो मेरा रिश्ता भी पक्का कर दिया था। लेकिन उसी के दो तीन महीने बाद दादी का डेथ हो गया था, तो इस वजह से सारा कुछ शादी वादी सारा कुछ कैंसिल हो गया, फिर मैंने अपना जो मुझे करना था मैंने वो शुरू किया। तो फिर उस टाइम पर मुझे दादी को मतलब मैं टॉप में पहुंच के मैं वही दादी को बोल रही थी कि दादी देखो अभी मैं इतना किया तो मैं आगे जाके मैं बहुत कुछ करूंगी, आपको अगर आप शायद अभी जिंदा होते तो मुझसे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते।
बड़े ही उत्साह से शीतल बताती हैं कि सबसे पहली बार उन्होंने किसी चोटी को सर किया तो उनके अनुभव उनका جو ایکسائٹمنٹ تھا وہ کیسا تھا؟
فرسٹ ٹائم مجھے اتنا ماؤنٹینگ مطلب کیا نہیں تھا, تو فرسٹ ٹائم تھا, ٹریکنگ بھی نہیں کیا تھا اس سے پہلے. جب ماؤنٹینگ کے لیے گیا تو پھر سارا کچھ اکوپمنٹ آپ کو کیری کرنا پڑتا ہے, 25 kg تک آپ کو سارا کیری کر کے, آپ کو ٹینٹ کیری کرنا ہے, راشن کیری کرنا ہے, اکوپمنٹس کیری کرنا ہے, ہائی آلٹیٹیوڈ کا کلوتھنگ کیری کرنا ہے, وہ سارا کچھ کیری کر کے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے, پھر اس کو کرنا ہے. تو فرسٹ ٹائم پہ مطلب ایسا فیل ہو رہا تھا کہ مطلب کیا مطلب یہ سب کیوں کر رہی ہوں میں, بہت زیادہ ڈیفیکلٹ, بہت زیادہ. لیکن جب سمٹ پہ پہنچا تو اس کے بعد سارا کچھ جتنا بھی کچھ کیا تو مطلب کچھ بھی نہیں لگتا, جس کی بہت آسم جا رہا, مطلب بہت ہی کیا بولیں گے, بہت سندر ویو اور سارے ماؤنٹینز میں 360 ویو دکھتا ہے وہاں سے, تو بہت ہی بہت آسم ہے.
دھیرے دھیرے پروتاروہن کی وشیش تعلیم لی, الگ الگ اونچائیوں کو سر کیا, کچھ ایسی چوٹیوں کو سر کیا جس کو آج تک کسی نے نہیں پہنچے تھے, کوئی وہاں تک نہیں پہنچا تھا. اب شیتل کو وشواس ہو گیا تھا کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو چڑھنے کے لیے بالکل تیار ہیں. لیکن اب پریشانی جو تھی وہ تھی فنڈنگ کی, اور اس کھیتر میں مدد کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا نیو ساؤتھ ویلز کے وولونگونگ آسٹریلیا کے بھارتیہ سمودائے نے.
اتنا زیادہ فنڈ ریز کرنا بہت مشکل تھا میرے لیے, اور جو آسٹریلیا کے وہ ہمیں ملنے کو ملے تھے وہ نینی تال جب میراتھن چلا تھا تو تب ملے تھے, تو وہ تب آسٹریلیا میں جتنے رہنے والے بھارتیہ لوگ ہیں تو وہ لوگ بہت ایسی چیزوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ ان میں انٹرسٹ ہے مطلب اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کا, آگے مطلب ان لوگوں کو دکھانے کا کہ نہیں مطلب ہمارے انگلش کی کم نہیں ہے. سارے لوگ کافی زیادہ اچھے تھے, کچھ فنڈنگ یہاں سے بھی ملا تھا, انڈین سے انڈیا سے بھی ملا تھا, لیکن وہ لوگوں کا سارا کچھ دیکھ کے مطلب کافی پرابلم ہو رہا تھا مجھے. تو مجھے فائنلی سر کو بولا کہ سر یہاں سے اتنا کچھ نہیں ہو پا رہا ہے, کہ سر آپ وہاں سے اگر کچھ ہو پا رہا ہے, سر بولتے کہ آپ ٹینشن مت لو, ہم لوگ شیٹل سب کریں گے بول کے. اس کے بعد سے پھر سر کو بات کیا, پھر سر نے فنڈنگ کا کیا, تو سر کا بہت زیادہ تھینک یو, تھینک یو رہوں گی میں ہمیشہ.
کیسے رہے ان کے ایوریسٹ چڑھنے کے انوبھو؟
8-9 دن کے بعد ہم لوگ بیس کیمپ پہنچتے ہیں. بیس کیمپ پہنچنے کے بعد جب ہم بیس کیمپ پہنچے تو وہ بیس کیمپ جو میرا ڈریم تھا, ایکچولی جو ڈریم تھا, فائنلی میں وہاں پہ بیس کیمپ میں پہنچ گئی. پھر وہاں پہ پوجا وغیرہ وہ سب کچھ چلا, پوجا کیا, پھر ہم لوگوں نے جب کلائمبنگ شروع کیا, جب ہم لوگ کیمپ 1 میں پہنچے, کیمپ 2 میں پہنچے, تو وہاں پہ ایولانچز بہت زیادہ آتا ہے, ایولانچ مطلب کنٹینیوسلی ایولانچ رہتا ہے. زیادہ وہاں پہ فیمس ہے کھمبو آئس فال, اس کو پاپ کارن ایریا بھی بولتے ہیں, کھمبو آئس فال کو. ایکچولی ٹوٹلی پاپ کارن کی طرح ہے وہ, اور کھمبو کبھی بھی مطلب کہ شفٹ ہوتا رہا, ہمیشہ اس کا روٹ چینج ہوتا رہتا ہے. پھر جب ہم اوپر کو کلائمبنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پھر میرے ساتھ ایک کینیڈین تھے, تو وہ میرا بڈی پارٹنر بنے تھے, مائک کر کے ان کا نام تھا. وہ اور میں ساتھ بہت اچھا ساتھ میں پورا ہم لوگوں نے ساتھ میں کلائم کیا, تو ہمیشہ نا وہ میرے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے کہ شیتل کیا کہتے ہیں میں آپ کا اسپیڈ پکڑوں گا ایسا ویسا بول کے. تو پھر میں نے کہا اوکے سر کوئی پرابلم نہیں ہے آپ, لیکن میں نے بولا کہ آرام سے آنا, میں میرا چلنے کا مطلب میرے کو ماؤنٹینس میں بہت سائلنٹ اور بہت اچھا سا فیل ہوتا ہے, تو مطلب جس لائک مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مطلب نا کہ گھر پہ ہی چل مطلب گھر پہ یا پھر نارمل ٹریکنگ ہی میں کر رہی ہوں وغیرہ بول کے. تو پھر میں اس کو کلائم کیا تھا. پھر اس کے بعد کافی ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو کچھ لوگوں کا ڈیتھ بھی ہوا تھا وہاں پہ, کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا آکسیجن کا پرابلم ہوا تھا, کافی کچھ لوگ ریکارڈس بنانے کے لیے آئے تھے تو ان لوگوں کو بھی پرابلم ہوا تھا, تو ان لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر سا لگ گیا تھا کہ پتا نہیں کہ کیا مطلب کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو تھوڑا سا پھر کیمپ 2 میں بہت زیادہ اس بار ونڈی بہت زیادہ ہوا, تو سارے ٹینٹ وینٹ سارا کچھ ٹوٹ گیا تھا, اور اس بار ٹریفک بہت زیادہ تھا. اس ٹریفک کو دیکھیے مطلب کافی لوگوں کا اسی ٹریفک میں ڈیتھ بھی ہوا تھا. ہم لوگ سمٹ کر کے جس نیچے کو ڈاؤن ہو رہے تھے تو وہاں پہ ایک کچھ تھے, تو ان کا پتہ بھی نہیں چلا, ایون وہ سامنے سامنے پہ ہی ان کو بس پانی, ہم نے پانی مانگا اور جیسے جب ہم نے میں کو پانی دیا تو اسی ٹائم ان کا ڈیتھ ہو گیا. اسی ٹائم جس وہ بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے میں ان کو نیچ سے آیا, دین ان کا وہاں پہ ڈیتھ ہو گیا. تو ہائر کسی میں میں نے وہ ڈیتھ فرسٹ ٹائم دیکھا, اور وہاں پہ ڈیڈ باڈیز دیکھی, تو وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا ایسا ڈیڈ باڈیز ایسا کسی کا ڈیتھ دیکھنا, تو وہ بہت زیادہ مجھے ہاریبل لگتا تھا کہ مطلب ایسے ہی مطلب لوگ پڑا ہوا ہے, کسی کو کچھ نہیں, لوگ جا رہے ہیں اسی کے سائڈ سے کارنر سے سائڈ سے نکل رہے ہیں, تو وہ بہت زیادہ وہ تھا میرے لیے ڈینجرس سائڈ کا.
انت میں شیتل کہتی ہیں کہ وہ زیادہ تر پروتوں کے بیچ میں ہی رہی ہیں, تو انہیں وہاں پر رہنا اکثر اپنی ماں کی گود میں رہنے جیسا अनुभव करवाता है।
चैलेंजेस क्लाइंबिंग का, हम लोग वॉल है, मैं लैडर क्रॉस करना पड़ता है, लैडर बहुत सारा लैडर है वहाँ पे, तो क्रेवासेज है, तो ऊपर से नीचे ऐसा क्रेवास दिखना बहुत ज्यादा, मतलब कि मतलब डर लगता था उस कैंप क्रेवास को क्रॉस करने में, क्योंकि लैडर से लैडर में क्रॉस करना, क्योंकि लैडर पूरा हिलता रहता था, तो उसमें बैलेंस करके क्रॉस करना, और नीचे देखने में भी डर लगता था कि, और जैसे हम क्लाइंब करते थे तो कब वो खुम्बू का ऊपर से गिर जाएगा, तो वो भी डर रहता था। लेकिन ऐसा मतलब मेरे को मतलब ऐसा था वो, जैसे मैं कभी भी माउंटेन क्लाइंब करती हूँ तो मुझे लगता है कि बचपन से माउंटेन्स में ज्यादा रही हूँ, तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी मेरे साथ है। जब मैंने फर्स्ट क्लाइंब किया था कंचनजंगा में, तो तब भी मुझे ऐसा ही लगा था कि ठीक है, अब मैं उनकी छोटी बहन से मिल रही हूँ, अब मैं बड़ी मतलब सबसे बड़ी सिस्टर से मिलने जाऊंगी उनकी। जैसे मैं माउंटेन से हमेशा बात करते रहती, जब मैं समिट में पहुंची, जब माउंटेन टॉप के समिट में जब मैं पहुंची, जिस उस टाइम पे मैं इतना मतलब जिस मैं देखा कि ऊपर के समिट, और मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इट्स लाइक मैं कभी भी माउंटेन्स में जाती तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि मेरी मम्मा, मैं बस उनको मुझे हग करना है, जितना कुछ भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करना है, और फिर उसके बाद खुश होके हमेशा वापस खुश होके बहुत ज्यादा। तो जब सभी समिट में पहुंची तो खूब बहुत ज्यादा रोई मैं, और सभी लोगों का मैंने थैंकफुल किया, और सभी लोग का सबका मैं बैनर वगैरह लेके गई थी, सभी लोग का वहाँ पे बैनर के साथ फोटोज वगैरह क्लिक किया, सारा कुछ किया। फिर मेरा शेरपा था तो वो बहुत ज्यादा खुश थे कि हमारा सक्सेसफुली सबमिट हुआ, तो मैं उनको भी हक किया, उनको भी मैं थैंक यू सो मच बोला। फिर हम लोग थोड़ी देर पे वहाँ पे बैठे, मतलब तो वहाँ पे ज्यादा देर आप नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग 15 से 20 मिनट हम लोगों ने वहाँ पे समिट पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग डाउन होना शुरू हुए, जैसे हम डाउन होना शुरू हुए तो जेरिक स्टेप में काफी ज्यादा ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को क्रॉस करना, तो उस टाइम पे ही एक ये रशियन कोई लड़की कोई लड़की थी, तो वो एकदम हैंग हो गई थी, एक्चुअली उनको बॉडी वेट उनसे समझा नहीं, तो बिल्कुल हैंग लड़ी स्टेप में थोड़ा सा स्टोन वगैरह तो वहां से स्लिप हो गया, वो हैंग हो गई थी। जैसे वो हैंग हुई तो फिर मेरे शेरपा ने उनका हेल्प वगैरह किया कि मतलब फिर वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। फिर उसके बाद हमारा 10 बजे के बाद वेदर खराब था, तो इसलिए हमको जल्दी से जल्दी डाउन होना था। फिर हम जब वापस आए तो वहाँ पे जब हम जैसे कैंप फोर में जिस पहुंचने वाले थे, हम लोग बालकनी में थे, बालकनी में फिर हम लोगों ने पानी वानी पिया, ऑक्सीजन वगैरह सबको चेंज किया। फिर हम जब वापस आए, एक वॉल आती है कैंप फोर से, जिस पर वहाँ पे 3 चाइनीज थे, वहाँ पे काफी ओल्ड एज के थे वो, तो वो ट्राई कर रहे थे, तो वो मुझसे पूछते हैं कि समिट यहाँ से कितना दूर है, जैसे वो बालकनी में भी नहीं पहुंचे थे, तो मैंने बोला कि सर इतना, मैंने कहा अभी तो बालकनी भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो फर्स्ट समिट आएगा, फिर उसके बाद लेडी स्टेप आएगा, उसके बाद ही समिट है। तो वो बोलते नहीं, समिट तो हमें लग रहा है, एक्चुअली उनको ना हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था, तो वो बोले थे कि नहीं मुझे ये समिट दिख रहा है बालकनी को। तो मुझे वो सब चीज मतलब इंसान का मतलब कितना जल्दी माइंड मतलब कैसे कैसे वहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स आता है, वो सारा कुछ मैंने बहुत देखा वहाँ पे। तो बिल्कुल एंकर में लगे हुए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं मुझे सबमिट करने के जाना है, और उस टाइम पे 8:30 बज चुके थे मॉर्निंग के, तो हम बोल रहे थे उनको कि सर टाइम बहुत हो चुका है, नेक्स्ट डे ट्राई करिएगा, आज जस्ट करिए और आज शाम को 7 बजे आप ट्राई करिएगा। लेकिन बोलते कि नहीं नहीं आज ही हम क्लाइंब करेंगे और मैं वहाँ पे जाऊँगा, ऐसा सब बोल के एंकर है और वो चल भी नहीं पा रहे। तो फिर मैंने उनको पानी वगैरह पिलाया, जो वो चाइनीज थे उन तीनों को पानी वगैरह पिलाया, उसमें एक ठीक थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब वो मान नहीं रहे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए, लेकिन वापस चले गए। और उसके बाद मुझे सेकंड थर्ड डे मुझे पता चला कि जो एक थे उसमें से चाइनीज, उनका डेथ हो गया बालकनी में। तो वो बहुत ज्यादा जिनके साथ मैंने बात किया, जिनके साथ मैं मिली, वो उनका डेथ हो गया, तो थोड़ा सा खराब बुरा सा लगता है। तो मतलब अगर आप माउंटेन पे जाते हैं तो खुद का सेफ रहना, खुद की सेफ्टी, आपका सैनिटाइजर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, आपको अगर कुछ खाना प्रॉपर, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके बाद खाना खाना है, और आपको आपको शेरपा का बात मानना है कि शेरपा बताएगा कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, क्योंकि हायर फील्ड में वो काफी बार चीज, मतलब वो 20 बार 21 बार 25 बार ऐसे लोगों ने क्लाइंब किया हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा हमसे एक्सपीरियंस होते हैं। तो माउंटेन्स से मुझे लगता है कि शेरपा लोगों का भी काफी बुरा हाथ है, क्योंकि वो लोग रोप ओपनिंग करते हैं, रोप फिक्स करते हैं, नंबर्स को लेके जाते हैं, تو شیرپا لوگ بھی کافی بولیں گے کہ پرفیکٹ مطلب پاورفل رہتا ہے.
sbs.com.au/hindi پر جائے اور ایسے انش کا آپ کی بھاشا میں آنند اٹھائے.